एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक एकेडमिक दार्शनिक नहीं है, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक ताकत हैं, कॉर्नेल रोनाल्ड वेस्ट।
हाँ, कॉर्नेल वेस्ट, 1953 में जन्म हुआ उनका, एक प्रमुख अमेरिकी अफ्रीकी बुद्धिजीवी, दार्शनिक और हाँ, एक जानी मानी सार्वजनिक हस्ती भी।
बिल्कुल, उन्होंने अपने विचारों से, अपनी सक्रियता से अमरीकी समाज पर वाकई गहरा असर डाला है।
सही कहा, मतलब वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहे। आप उन्हें सड़कों पर देखेंगे, टीवी बहसों में, यहाँ तक कि फिल्मों में भी।
हाँ, ये मजेदार बात है।
वो जैसे अकादमिक दुनिया और सामाजिक न्याय के संघर्षों के बीच एक पुल का काम करते हैं।
तो समकालीन अमेरिका के सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक दार्शनिकों में से एक कह सकते हैं उन्हें।
बिल्कुल, बेशक।
और उनका जो सबसे अहम काम माना जाता है वो है प्रोफेटिक प्रैग्मेटिज्म। अब ये सुनने में तो थोड़ा भारी लगता है, भविष्य कहने वाला व्यवहारवाद।
हाँ, शब्द थोड़ा जटिल है।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि वेस्ट के इस खास विचार को, उनके जीवन को और उनके काम के असर को थोड़ा आसान भाषा में समझें।
हाँ, बिल्कुल। और ये जो प्रोफेटिक प्रैग्मेटिज्म है, ये असल में कई धाराओं का संगम है। इसमें अमेरिकी दर्शन है, फिर वो मुक्ति धर्मशास्त्र है।
लिबरेशन थियोलॉजी,
हाँ, वही। मतलब ये विचार कि भाई धार्मिक आस्था का मतलब है हाशिए पर खड़े लोगों की आज़ादी के लिए लड़ना।
अच्छा,
और साथ में है क्रिटिकल रेस थ्योरी, जो नस्ल और पावर के जो स्ट्रक्चरल रिश्ते हैं ना, उनका विश्लेषण करती है।
तो इन सब का मिला जुला रूप है ये।
जी, तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, तो सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं जिसने कॉर्नेल वेस्ट को बनाया है ना।
बिल्कुल, ये वो समय था जब अमेरिका, देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन की बड़ी जीतें तो हो चुकी थीं,
हाँ,
लेकिन फिर भी नस्ली तनाव था, असमानता थी, समाज जूझ रहा था इन चीजों से।
ब्लैक पावर चेतना भी तो उभर रही थी उस वक्त।
हाँ, बिल्कुल। और देश का नस्ली भविष्य कैसा होगा, इस पे जबरदस्त बहसें चल रही थीं।
वो 60-70s का दशक काफी उथल पुथल वाला था ना।
बहुत ज्यादा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर लिहाज से। वियतनाम युद्ध का विरोध हो रहा था और बौद्धिक जगत में भी नई नई लहरें थीं। पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थियरी, इन पर खूब चर्चाएं थीं।
और अमेरिकी प्रैग्मेटिज्म में भी लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही थी।
हाँ, वो भी था। और साथ ही, जैसा हमने कहा, मुक्ति धर्मशास्त्र भी अपनी जगह बना रहा था।
तो इतने सारे विचारों के बीच वेस्ट पे सबसे गहरा असर किन चीजों का पड़ा?
देखिए, कई प्रभाव थे, पर शायद सबसे गहरा असर ब्लैक चर्च परंपरा का था।
अच्छा,
हाँ, जहाँ वो आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय का संघर्ष हमेशा से जुड़ा रहा है।
जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो अहिंसक प्रतिरोध, उनका नैतिक साहस, फिर जॉन ड्यूई का व्यवहारवाद, नीबूहर का यथार्थवाद और जेम्स एच कोन जैसे मुक्ति धर्मशास्त्र के बड़े विचारक।
और आपने ब्लैक पैंथर आंदोलन का भी जिक्र किया था।
हाँ, वो भी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जमीनी सक्रियता, जैसे वो मुफ्त नाश्ते का कार्यक्रम चलाते थे बच्चों के लिए,
हाँ,
उसने भी वेस्ट को बहुत प्रभावित किया। तो आप उनके काम में किंग के आदर्श और पैंथर्स की वो मुखरता, दोनों का एक तनाव और संगम देख सकते हैं।
और उस समय के दूसरे बड़े नाम जैसे बेल हुक्स, हेनरी लुईस गेट्स जूनियर, एंजेला डेविस, ये सब भी उनके समकालीन थे।
जी हाँ, बिल्कुल।
तो मतलब एक तरफ कानूनी बराबरी मिल गई थी, लेकिन असलियत में नस्लीय असमानता, गरीबी और एक तरह की आध्यात्मिक नाउम्मीदी सी थी।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वेस्ट इसी विरोधाभास के बीच से अपनी आवाज उठा रहे थे।
ये समझना जरूरी है कि उनका काम हवा हवाई नहीं था, वो उस समय की सच्चाइयों और संघर्षों से निकला था।
एकदम। चलिए, अब जरा उनकी निजी जीवन और सफर पर थोड़ी बात करते हैं।
हाँ,
जन्म हुआ 2 जून 1953 को तुलसा, ओक्लाहोमा में, पर बचपन बीता सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में। परिवार मध्यम वर्गीय बैप्टिस्ट था और जैसा हमने कहा, ब्लैक चर्च और नागरिक अधिकार आंदोलन का असर घर के माहौल में ही था।
और सुना है पढ़ने में बहुत तेज थे बचपन से।
अरे, असाधारण रूप से। आप सोचिए, महज 17 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन,
सच में?
17 साल में,
हाँ,
और सिर्फ 3 साल में ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली ऑनर्स के साथ। विषय था निकट पूर्वी भाषाएं और साहित्य।
कमाल है।
इसके बाद वो गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी,
हाँ,
वहां से फिलॉसफी में पीएचडी की, और ये भी एक मील का पत्थर था।
कैसे?
वो प्रिंसटन से फिलॉसफी में डॉक्टरेट पाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकन बने।
अच्छा, ये बड़ी बात थी उस समय।
बिल्कुल।
उनके जीवन में ऐसे कौन से मोड़ आए जिसने उनकी सोच और दिशा तय की? कुछ खास फैसले?
हाँ, कुछ बड़े फैसले थे। एक तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाना, दूसरा जो प्रोफेटिक क्रिश्चियनिटी है, मतलब भविष्य कहने वाली ईसाई धर्म की परंपरा, उसे गहराई से अपनाना, और तीसरा ये तय करना कि भाई सिर्फ अकादमिक दुनिया में नहीं रहना है, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल बनना है।
मतलब ज्ञान को समाज बदलने के लिए इस्तेमाल करना है।
हाँ बिल्कुल। और वो जो ब्लैक पैंथर पार्टी के सामाजिक कार्यक्रम थे ना, जैसे बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता, उससे उन्हें जमीनी सक्रियता की ताकत का एहसास हुआ।
और उनका अकादमिक करियर भी तो बहुत शानदार रहा है।
बहुत ही प्रतिष्ठित, अमेरिका के टॉप संस्थानों में पढ़ाया उन्होंने, यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी, येल, हार्वर्ड, प्रिंसटन, सब जगह।
लेकिन वो सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं रुके।
नहीं बिल्कुल नहीं, मीडिया में लगातार देखते रहे, फिल्म डायरेक्टर स्पाइक ली के साथ काम किया, और सबसे शायद चौंकाने वाली बात, वो मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म द मैट्रिक्स के सीक्वल में भी थे।
हैं? द मैट्रिक्स में? ये तो मुझे पता ही नहीं था। कौन सा रोल था?
काउंसलर वेस का एक छोटा सा रोल था, पर था।
वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन उनका रास्ता हमेशा सीधा नहीं रहा, हार्वर्ड के साथ उनके विवाद भी तो हुए थे।
हाँ, विवादों से भी उनका नाता रहा है। हार्वर्ड से वो दो बार निकले, और दोनों बार काफी विवादास्पद तरीके से।
अच्छा।
पहली बार कार्यकाल यानी टेन्योर को लेकर वहां के प्रेसिडेंट थे लॉरेंस समर्स, उनसे सार्वजनिक टकराव हुआ। दूसरी बार भी मुद्दे वही थे, अकादमिक स्वतंत्रता, अश्वेत विद्वानों का सम्मान, उनकी राजनीतिक सक्रियता, इन पर मतभेद थे। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका DSA के सक्रिय सदस्य रहे हैं, बर्नी सैंडर्स के बड़े समर्थक रहे।
और 2023 में तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी थी।
हाँ, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर।
तो ये थी उनकी जिंदगी की एक झलक। अब आते हैं उनके सबसे खास विचार पर, प्रोफेटिक प्रैग्मेटिज्म। सुनने में भारी है, पर क्या इसे आसान शब्दों में समझा जा सकता है? क्या मतलब है इसका?
हाँ कोशिश करते हैं। देखिए, प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद, ये जॉन डुई जैसे अमेरिकी दार्शनिकों की देन है। ये कहता है कि किसी विचार की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि वो असल जिंदगी में कितना काम का है, कितना फायदेमंद है। ये प्रयोग और अनुभव पर जोर देता है।
ठीक है।
अब वेस्ट इसमें प्रोफेटिक यानी भविष्य कहने वाला या पैगंबराना तत्व जोड़ते हैं।
पैगंबराना?
हाँ, ये तत्व आता है ब्लैक चर्च की परंपरा से, मुक्ति धर्मशास्त्र से, जो कहता है कि अन्याय के खिलाफ बोलो, सच कहो, और एक बेहतर कल की उम्मीद जगाओ।
अच्छा, तो ये सिर्फ विचारों को परखना नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक नैतिक दिशा देना हुआ। मतलब ये सोचना कि कौन से विचार न्याय और प्रेम पर आधारित समाज बनाने में काम आ सकते हैं।
बिल्कुल सही। ये सिर्फ दुनिया को समझने का दर्शन नहीं है, ये उसे बदलने का बुलावा है। ये इंटेलेक्चुअल मेहनत को नैतिक जज्बे और राजनीतिक कमिटमेंट से जोड़ता है। ये कहता है कि भाई फिलॉसफी सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहनी चाहिए, उसे लोगों के दुख दर्द, उनके संघर्षों से जुड़ना चाहिए।
तो इस प्रोफेटिक प्रैग्मेटिज्म के नजरिए से देखें तो वेस्ट के काम में कौन से मुद्दे बार बार आते हैं, कौन सी चिंताएं हैं?
हाँ, कुछ चीजें उनके लेखन और भाषणों में लगातार दिखती हैं। सबसे पहले तो श्वेत वर्चस्व यानी व्हाइट सुप्रेमेसी की तीखी आलोचना।
ये सिर्फ नस्लीय भेदभाव तक सीमित नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो उन सांस्कृतिक और संस्थागत ढांचों पर चोट करते हैं जो अश्वेत लोगों को हाशिए पर धकेलते हैं। इसके साथ ही वो बेलगाम पूंजीवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद के भी कड़े आलोचक रहे हैं।
वो जीवन की दुखद भावना यानी ट्रेजिक सेंस ऑफ लाइफ की भी बात करते हैं, पर साथ ही प्रेम और न्याय पर भी बहुत जोर देते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता?
नहीं, विरोधाभास नहीं है, ये एक गहरी समझ है कह सकते हैं। वेस्ट मानते हैं कि जीवन में दुख है, अन्याय है, बुराई है, ये एक सच्चाई है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसी दुखद सच्चाई को मानते हुए भी हमें प्रेम और न्याय के लिए लड़ना होगा। लोकतंत्र और इंसानी गरिमा कोई थाली में परोसी हुई चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है।
और यहीं पर वो ब्लूज संवेदनशीलता की बात आती है ना?
हाँ बिल्कुल,
ब्लूज सेंसिबिलिटी।
ये क्या है, इसका ब्लूज संगीत से क्या लेना देना है?
बहुत गहरा लेना देना है। जैसे ब्लूज संगीत गहरे दुख और दर्द से निकलता है ना?
हाँ।
लेकिन फिर भी उसमें एक
एक जिंदा दिली होती है, एक संघर्ष की लय होती है। ठीक उसी तरह वेस्ट कहते हैं कि हमें जीवन के दुखों और अन्यायों को स्वीकार करना है, पर हार नहीं माननी, उस दर्द से ताकत लेनी है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। यही है ब्लूज संवेदनशीलता।
तो ये नाउम्मीदी या शून्यवाद का जवाब है?
हाँ बिल्कुल, निहिलिज्म यानी ये मानना कि जीवन का कोई मतलब या मूल्य नहीं है, उसका जवाब है ये। और इसका इलाज क्या है? प्रेम, आशा और लगातार संघर्ष। और वो रूपांतरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वर्जन की भी बात करते हैं, उसका क्या मतलब हुआ?
उसका मतलब है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ बाहरी ढांचे बदलने से नहीं आएगा, सिर्फ कानून बदल देने से नहीं, इसके लिए लोगों के दिलों में, उनकी आत्मा में भी बदलाव लाना होगा।
अच्छा,
हमें न सिर्फ बेहतर नीतियां चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे के लिए ज्यादा हमदर्दी, ज्यादा प्रेम, न्याय की ज्यादा गहरी भावना भी चाहिए। ये दोनों बदलाव साथ साथ चलते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक।
उनके इन विचारों का अकादमिक दुनिया पर क्या असर रहा? क्या उन्होंने सोचने के तरीके बदले?
हाँ, असर तो काफी गहरा रहा। एक तो उन्होंने अकादमिक फिलॉसफी, जो कई बार आम लोगों से कटी हुई लगती है,
हाँ लगती है,
उसे कल्चरल स्टडीज और पब्लिक बहसों से जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि दर्शन कैसे हाशिए पर पड़े लोगों के अनुभवों से जुड़ सकता है, उनकी आवाज बन सकता है।
क्रिटिकल रेस थ्योरी की नींव रखने में भी उनका नाम आता है।
हाँ, उसकी दार्शनिक नींव रखने में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। मुक्ति धर्मशास्त्र को आगे बढ़ाने में भी उनका योगदान है। अफ्रीकी अमेरिकी स्टडीज, पॉलिटिकल थ्योरी, धर्मशास्त्र, इन सब फील्ड्स में बहुत से स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट उनसे प्रेरित हुए हैं।
अब उनकी कुछ खास किताबों की बात कर लेते हैं। 1982 में आई थी प्रोफेसी, डिलीवरेंस एंड एफ्रो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी क्रिश्चियनिटी, ये उनकी शुरुआती किताबों में से थी।
जी हाँ, ये उनकी पहली बड़ी और प्रभावशाली किताब थी। इसमें उन्होंने मुक्ति धर्म शास्त्र, मार्क्सवादी विश्लेषण और ब्लैक चर्च की परंपराओं को एक साथ मिलाया। उन्होंने तर्क दिया कि ईसाई धर्म को, मतलब सिर्फ यथास्थिति बनाए रखने वाली ताकत नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक न्याय और नस्लीय मुक्ति के लिए एक क्रांतिकारी ताकत बनना चाहिए।
फिर 1989 में आई द अमेरिकन इवेजन ऑफ फिलॉसफी, ए जीनियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इसमें फोकस अमेरिकी व्यवहारवाद पर था।
सही, ये अमरीकी प्रैग्मेटिज्म पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इमर्सन से लेकर उनके समय तक के विचारकों को इसमें शामिल किया गया है। वेस्ट ने प्रैग्मेटिज्म को अमेरिका का अपना खास दार्शनिक योगदान बताया, पर साथ ही उसकी सीमाओं की आलोचना भी की।
किस तरह की सीमाएं?
खासकर नस्ल और सत्ता के सवालों को नज़रअंदाज करने के लिए। उन्होंने दिखाया कि कैसे इमर्सन से लेकर W.E.B. डुबोइस तक प्रैग्मेटिज्म की एक और ज्यादा रेडिकल धारा भी रही है।
और फिर 1993 में वो किताब आई जिसने उन्हें बहुत पहचान दिलाई, रेस मैटर्स।
बिल्कुल, रेस मैटर्स तो बेस्ट सेलर बन गई थी और इसने वेस्ट को एक बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर स्थापित कर दिया।
ये निबंधों का संग्रह था ना?
हाँ, और ये 1992 के लॉस एंजल्स दंगों के ठीक बाद लिखा गया था। इसमें वेस्ट ने बड़ी बेबाकी से कहा कि अमेरिकी समाज को नस्लवाद के गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जख्मों का सामना करना ही होगा। उन्होंने लिबरल और कंजर्वेटिव बहसों की सीमाओं को दिखाया और कहा कि अश्वेत समुदायों में जो शून्यवाद या नाइलिज्म फैल रहा है, उसे दूर करने के लिए प्रेम, देखभाल और संघर्ष की जरूरत है।
और 2004 में डेमोक्रेसी मैटर्स भी आई थी।
हाँ, उसमें उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र के सामने जो खतरे थे, उनकी पहचान की। तीन बड़े खतरे बताए, एक तो मुक्त बाजार का अंधाधुंध समर्थन, दूसरा आक्रामक सैन्यवाद और तीसरा बढ़ता हुआ अधिनायकवाद।
ये बातें तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगती हैं।
बिल्कुल लगती हैं।
अच्छा, अगर हम वेस्ट की तुलना उनके समकालीन या दूसरे बड़े विचारकों से करें तो क्या चीज उन्हें खास बनाती है, क्या लगे उनमें?
कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि वो सिर्फ अकादमिक दार्शनिक नहीं है, वो जॉन पॉल सार्त्र या जेम्स बॉल्डविन की तरह एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, समाज से सीधे बात करते हैं।
ठीक है।
दूसरी बात, कई जो सेक्युलर क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उनके उलट वेस्ट की सोच में धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक चिंताएं बहुत अहम हैं। तीसरी बात, जो पारंपरिक धर्मशास्त्री होते हैं उनसे अलग वो तीखी राजनीतिक आलोचना करने और दार्शनिक बारीकियों में जाने से हिचकिचाते नहीं है।
रिचर्ड रॉटी का नाम भी आता है प्रैग्मेटिज्म के संदर्भ में। उनसे वेस्ट की तुलना कैसे की जा सकती है?
हाँ, ये दिलचस्प तुलना है। दोनों ही प्रैग्मेटिज्म से प्रभावित थे, पर रॉटी ज्यादा सेक्युलर और थोड़े विडंबनापूर्ण आयरोनिक नजरिया रखते थे। वेस्ट क्या करते हैं, वो प्रैग्मेटिज्म में एक नैतिक और आध्यात्मिक तात्कालिकता, एक पैगंबराना आवाज जोड़ते हैं।
मतलब रॉटी के लिए दर्शन शायद एक बौद्धिक खेल ज्यादा था,
शायद कह सकते हैं। वेस्ट के लिए ये जीवन मरण का सवाल है। और हाँ, सत्ता के सांस्कृतिक आयामों पर जोर देने के मामले में उनकी तुलना इतालवी विचारक एंटोनियो ग्राम्शी से भी की जा सकती है।
तो कुल मिलाकर उनकी विरासत क्या है और आज के समय में उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं?
उन्हें अक्सर आधुनिक अमेरिकी यरमाया कहा जाता है, बाइबल के उस पैगंबर की तरह जो सत्ता को सच का आईना दिखाता है, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। उन्होंने क्रिटिकल रेस थ्योरी की बौद्धिक जमीन तैयार करने में मदद की, पब्लिक इंटेलेक्चुअलिज्म का एक शक्तिशाली मॉडल पेश किया। उनका असर आप ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों पर देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नए उभार पर, प्रगतिशील ईसाई धर्म पर, सब पर दिखता है।
और आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं?
हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में उनके विचार पढ़ाए जाते हैं, उन पर बहस होती है।
और मौजूदा हालात में उनकी प्रासंगिकता की बात करें तो
देखिए, नस्लीय न्याय, लोकतंत्र का भविष्य, समाज में धर्म की भूमिका, ये मुद्दे आज भी उतने ही गर्म हैं जितने तब थे जब वेस्ट ने लिखना शुरू किया था। सिस्टमिक नस्लवाद, बढ़ती आर्थिक असमानता, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा, ये सब वही मुद्दे हैं जिनकी तरफ वेस्ट लगातार इशारा करते रहे हैं।
वो व्यस्त छात्रवृत्ति यानी एंगेज्ड स्कॉलरशिप का एक उदाहरण है।
बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि बौद्धिक गहराई और राजनीतिक सक्रियता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, दुश्मन नहीं।
उनके कुछ मशहूर कोट्स का भी जिक्र करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध है, कभी ना भूलें कि न्याय वो है जो प्यार सार्वजनिक रूप में दिखता है।
हाँ, जस्टिस इज व्हाट लव लुक्स लाइक इन पब्लिक, ये उनके दर्शन का सार है। एक तरह से ये ईसाई प्रेम की जो व्यक्तिगत भावना है, उसे सामाजिक न्याय की सार्वजनिक लड़ाई से जोड़ता है। मतलब सच्चा प्यार सिर्फ निजी एहसास नहीं हो सकता, उसे समाज में बराबरी और इंसाफ लाने के लिए सक्रिय होना ही पड़ेगा।
एक और गहरा विचार है, सत्य की शर्त है पीड़ा को बोलने देना।
द कंडीशन ऑफ ट्रूथ इज टू अलाउ सफरिंग टू स्पीक।
हाँ, ये उनकी पैगंबराना परंपरा से जुड़ा है। मतलब ये कि अगर हम सच जानना चाहते हैं तो हमें उनकी आवाज सुननी होगी जो हाशिए पर हैं, जो दर्द में हैं। पीड़ा को स्वीकार किए बिना, उसे सुने बिना हम सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकते। और ये वाला भी बहुत दमदार लगता है, खासकर आज के माहौल में। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग चरमपंथ से डरते हैं, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर हमें याद दिलाएंगे कि संयम की विफलता अक्सर बुराई की जीत होती है।
हाँ, ये सीधे सीधे उस बीच के रास्ते वाली समझौतावादी राजनीति को चुनौती है। वेस्ट कह रहे हैं कि कभी कभी अन्याय इतना बड़ा होता है कि चुप रहना या संयम बरतना भी बुराई का साथ देने जैसा हो जाता है। सच बोलने के लिए, न्याय के लिए खड़े होने के लिए कई बार आपको अपना आराम, अपनी सुरक्षा दांव पे लगानी पड़ती है। वो अक्सर जेम्स बोल्डविन का एक कोट भी इस्तेमाल करते हैं। इस देश में नीग्रो होना और अपेक्षाकृत सचेत होना लगभग हर समय गुस्से की स्थिति में होना है। ये उस लगातार मानसिक और आध्यात्मिक बोझ की तरफ इशारा है जो सिस्टेमिक नस्लवाद आप पर डालता है, और उस गुस्से की तरफ जो अन्याय को देखकर पैदा होता है।
जाहिर है इतने मुखर विचारक की आलोचनाएं भी हुई होंगी।
हाँ बिल्कुल हुई है। अकादमिक दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि वो मतलब रिसर्च और विश्लेषण से ज्यादा अपनी पब्लिक इमेज और परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं।
अच्छा,
कुछ लोग उनके विचारों के संश्लेषण पर सवाल उठाते हैं कि क्या वो हमेशा लॉजिकली फिट बैठता है। कभी कभी उन्हें पारंपरिक दार्शनिक से ज्यादा एक कल्चरल क्रिटिक या उपदेशक की तरह देखा जाता है।
और विवाद?
हाँ, विवाद भी रहे। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट लॉरेंस समर से उनका झगड़ा काफी मशहूर हुआ था। राष्ट्रपति बराक ओबामा की उन्होंने बहुत तीखी आलोचना की थी, उन्हें वॉल स्ट्रीट के लिए काला शुभंकर तक कह दिया था।
अरे
हाँ, इससे लिबरल खेमे में काफी नाराजगी हुई थी। हार्वर्ड से उनके जाने के पीछे भी टेन्योर विवाद के अलावा उनकी पॉप कल्चर में भागीदारी और राजनीतिक सक्रियता को लेकर तनाव थे। उनके कुछ राजनीतिक स्टैंड्स ने उन्हें कई बार मुख्यधारा के आंदोलनों से अलग भी किया है।
कुछ और रोचक बातें भी उनके बारे में, कम ज्ञात पहलू।
हाँ हाँ, कुछ मजेदार चीजें हैं, जैसे वो द मैट्रिक्स फिल्मों में काउंसलर वेस्ट बने। ये दिखाता है कि वो पॉप कल्चर को भी फिलॉसफी और पॉलिटिक्स के नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कई स्पोकन वर्ड एल्बम्स भी रिकॉर्ड किए हैं।
स्पोकन वर्ड?
हाँ, जिनमें वो अपने विचारों को जैज और हिप हॉप म्यूजिक के साथ पेश करते हैं। वो संगीत के बड़े शौकीन हैं।
और उनका पहनावा भी तो बहुत खास है, वो थ्री पीस सूट और एफ्रो हेयर स्टाइल।
हाँ, वो उनका एक सोचा समझा स्टाइल है, वो गरिमा, बौद्धिक गंभीरता और अपनी जड़ों से जुड़ाव सबका प्रतीक है। ये उनके पूर्वजों को जो उपदेशक थे, शिक्षक थे, पुलमन पोर्टर्स थे, रेलवे में काम करने वाले अश्वेत कुली जिन्होंने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया, उनको एक तरह की श्रद्धांजलि भी है। एक और बात, गहरे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उनकी दोस्ती रॉबर्ट जॉर्ज जैसे कंजर्वेटिव विचारक से भी रही है।
अच्छा।
हाँ, ये दिखाता है कि वो बातचीत के दरवाजे खुले रखने में यकीन रखते हैं और वो अपनी निजी चुनौतियों जैसे डिप्रेशन से अपने संघर्षों के बारे में भी खुलकर बात करते हैं।
ये भी उनकी ईमानदारी दिखाता है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए कॉर्नल वेस्ट से हम क्या सीख सकते हैं? सुनने वालों के लिए कोई आखिरी ख्याल?
कॉर्नल वेस्ट हमें याद दिलाते हैं कि दर्शन सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। उनका जो प्रोफेटिक प्रैग्मेटिज्म है वो हमें चुनौती देता है कि हम अन्याय देखकर चुप न रहें, प्रेम को सिर्फ निजी न समझें और मुश्किल सच का सामना करने से डरे नहीं।
हाँ, तो शायद हम सब ये सोच सकते हैं कि उनकी इस व्यस्त बौद्धिकता से प्रेरणा लेकर हम अपने आसपास की दुनिया में गहरे विचारों और सार्थक कामों के बीच कैसे पुल बना सकते हैं।
बिल्कुल। और निराशा के दौर में मुश्किलों के बीच उम्मीद को एक अनुशासित विकल्प, डिसिप्लिन चॉइस की तरह कैसे जिंदा रख सकते हैं।
कैसे हम दर्शन को सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज ना मानकर उसे अपनी जिंदगी का, अपने एक्शन का हिस्सा बना सकते हैं,
यही सवाल वो हमारे सामने छोड़ जाते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अख्तर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।